महाबंध पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर एक. ओम नमः सिद्धेभ्य. ओम नमः सिद्धेभ्य. ओम नमः सिद्धेभ्य. ॐ शुद्धात्मने नमः. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्. आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का छह नंबर का खंड है. अभी आज से अपना चतुर्थ प्रदेश बंध अधिकार शुरू हुआ है और ये पुस्तक है छह नंबर की. उसके पहले पृष्ठ पर आते हैं. अभी हम यहां से शुरुआत करते हैं. वही नमोकार मंत्र से ही उन्होंने यहां पर भी शुरुआत की है. वो अभी हमने मंगलाचरण कहा ही था. अब यहां कहते हैं ये नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौवसाहूणम. उसका नीचे अर्थ बताया है. अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार हो. अब मंगलाचरण के बाद विषय को शुरुआत करते हैं कि प्रदेश बंध दो प्रकार का है. प्रदेश बंध का अर्थ समझते हैं ना, कितने हाँ नंबर ऑफ परमाणु बनते हैं उसको प्रदेश कहेंगे. एक परमाणु को एक प्रदेश कहेंगे यहां पर. तो प्रदेश बंध का कारण क्या है? योग. जहां जितना योग अधिक उतनी ही मात्रा में प्रदेशों की संख्या अधिक. जैसे एक समय प्रबद्ध में जितने परमाणु ग्रहण किए जाते हैं, योग अगर दुगुना होगा तो समय प्रबद्ध भी दुगुना होता है और योग असंख्यात गुना होगा तो समय प्रबद्ध भी असंख्यात गुना होता है. तो कहते हैं प्रदेश बंध दो प्रकार का है, मूल प्रकृति प्रदेश बंध और उत्तर प्रकृति प्रदेश बंध. पहले मूल प्रकृति प्रदेश बंध की चर्चा चलेगी. यहां से मूल प्रकृति प्रदेश बंध में भागा भाग समुदाहार का सर्वप्रथम विचार करते हैं. भागा भाग समुदाहार ने प्रत्येक मूल प्रकृति में कितने भाग प्रमाण उसके समय प्रबद्ध कितना हिस्सा उसके चला अंदर चला जाता है. वह इस प्रकार है. आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव के यानी आयु सहित जो आठों कर्म बांध रहा है उस जीव की बात यहाँ कर रहे हैं. आयु कर्म का भाग सबसे स्तूक है. हमने देखा था कि जो बंटवारा हो जाता है तो जो समय प्रबद्ध ग्रहण किया है पहले में पहले उसको आवली के असंख्यात भाग से भाग देते हैं, एक भाग जुदा रख और बहुभाग किस उसके आठ भाग करेंगे समान. फिर वो समान भाग जो एक भाग रखा था फिर उसको उसी भाग से भाग देंगे और फिर बहुभाग पहला किसको देंगे? वेदनियों को. फिर जो एक भाग बचा उसका मोहनी को जाएगा. फिर एक भाग बचा उसके ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय तीनों को समान. फिर एक भाग बचा है उसका बहुभाग नाम गोत्र में समान और अंतिम जो एक भाग बचा है वो आयु कर्म में चला जाएगा. इसलिए आयु में सबसे स्तोक बताया. तो कहते आयु कर्म का भाग सबसे स्तोक है. इससे नाम और गोत्र कर्म का भाग विशेष अधिक है, तुल्य है और विशेष अधिक है. वो भी अनंत में ही होती है क्योंकि अनंतों का आठवां भाग भी उतना ही होगा. मैंने पहले जो आठ भाग करते हैं ना एक भाग निकाल कर वो सब में समान जाता है फिर जो एक बहुभाग के आठ भाग किए और एक भाग जो बचा था उसका बहुभाग 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 देते गए, यानी समान भाग प्लस बहुभाग, समान भाग प्लस बहुभाग, इस तरह से बंटवारा हुआ था। इसलिए वो विशेष अधिक में चला जाता है, क्योंकि बेसिकली जो आठ भाग तो समान हुए थे, कि एक भाग बचा था उसमें विशेष अधिक जैसे तो कहते कि आयु कर्म का सबसे स्तोक है, इससे नाम और गोत्र कर्म का भाग विशेष अधिक है और दोनों का तुल्य है, इससे ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का भाग विशेष अधिक है, इससे मोहनीय कर्म का भाग विशेष अधिक है और इससे वेदनीय कर्म का भाग विशेष अधिक है। हमने वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो वेदनीय फिर मोहनीय फिर ज्ञानावरण दर्शन अंतराय फिर नाम गोत्र और अंत में आयु। शंकाकार पूछते हैं आयु कर्म को स्तोक भाग क्यों मिलता है, उसका समाधान देखो कैसा क्या, क्योंकि आठ कर्मों में आयु कर्म का स्थितिबंध स्तोक है, इससे आयु कर्म को स्तोक भाग मिलता है, यानी उसके निषेकों में तो परमाणु करीबन उतने ही होंगे, कम स्थिति में अधिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका। अभी उसके बाद नाम कर्म का लिया, वो बीस कोड़ा कोड़ी मैक्सिमम स्थिति वाले कर्म है, फिर तीस वाले लिए, फिर मोहनीय लिए, हाँ वेदनीय का स्थिति ज्यादा नहीं है, फिर भी वो सुख दुख में निमित्त है ना उसका, हाँ प्रकृति विशेष वो भी बताएंगे अभी। देखो तो आठ कर्मों में आयु कर्म का स्थितिबंध स्तोक है, इससे आयु कर्म को स्तोक भाग मिलता है। वेदनी के सिवा शेष कर्मों में जिसकी स्थिति अधिक है उसको बहुत भाग मिलता है, वेदनी को छोड़कर की बात होती है, परंतु वेदनीय को अधिक भाग मिलने का अन्य कारण है। क्या कारण है, यदि वेदनीय कर्म न हो तो सब कर्म जीव को सुख या दुख उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, इस कारण वेदनीय को सबसे बहुत भाग मिलता है, तथा इसी कारण से सब कर्मों के ऊपर वेदनीय का भागा भाग प्राप्त होता है, सबसे ऊपर यानी सबसे अधिक, मोहनीय से भी अधिक। अब यह तो हो गई जो आठ प्रकार के कर्म बांधते उसमें क्या पोजीशन है, सात प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव के भी अभी उसमें आयु बिना जो एक भाग बचा है वो दो में डिवाइड होकर नाम गोत्र को मिलेगा, यानी उसके समान भाग साथ ही करेंगे नहीं होते हैं, तो कहते उसमें नाम और गोत्र कर्म का भाग स्तोक है, इससे ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का भाग विशेष अधिक है, इससे मोहनीय कर्म का भाग विशेष अधिक है और इससे वेदनीय कर्म का भाग विशेष अधिक है। अब छह प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव ये कौन हो गए, दसवें गुणस्थान में आयु और मोहनीय नहीं बनती है, तो कहते छह कर्मों का बंध करने वाले जीव के भी नाम और गोत्र कर्म का भाग स्तोक है। ये मूल प्रकृति ली ना इस सच, तो नाम कर्म कौन सा बंध रहा है अश्विन भाई, यश कीर्ति, और गोत्र में तो उच्च गोत्र बंध रहा है, यानी पूरा समय प्रबद्ध उसमें जाएगा। ये हमारी उत्तर प्रकृति की बात नहीं हो रही है, जब उत्तर की बात आएगी तब उसकी चर्चा करेंगे। इससे ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का भाग विशेष अधिक है और इससे वेदनीय कर्म का भाग विशेष अधिक है। अब इसी का विशेषार्थ देखते हैं। गुणस्थान भेद से बंध चार प्रकार का होता है, बंध चार प्रकृति प्रकार का है ना, प्रकृति बंध, वो चार प्रकार का बंध जो प्रकृति बंध प्रदेश बंध स्थिति बंध उसकी बात नहीं है, तो गुणस्थान भेद से प्रकृति बंध कहना चाहिए यहां पर, क्योंकि अभी हमारा विषय ही प्रकृति बंध का है, इसलिए यहां प्रकृति का नाम भले नहीं लिया परंतु यहां विशेषार्थ में तो प्रकृति बंध कहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो गुणस्थान भेद से प्रकृति बंध चार प्रकार का होता है, आठ प्रकृतिक बंध, क लगाए ना, यानी आठ प्रकृति वाला बंध, जिसको हम बंध के स्थान कहेंगे, उत्तर प्रकृतियों में प्रकृति बंध के स्थान कितने कैसे हो गए, 8 प्रकृतिक बंध, 7 प्रकृतिक बंध, 6 प्रकृतिक बंध और 1 प्रकृतिक बंध। अभी हमने 8 प्रकृतिक बंध, जहां आयु बनते उसको 8 का कहेंगे, जहां आयु बिना 7 बनते उसको 7 का कहेंगे, 10वें गुण स्थान में 6 का कहेंगे और 1 का कहां कहेंगे, 11वें में कहेंगे। और 13वें, 11, 12, 13 अनुभाग में तो हमको ऊपर की बात नहीं सोचनी थी, 10वें तक सोचना था, यहाँ प्रदेश बंद है ना, यहाँ तो सोचेंगे, सॉरी प्रकृति बंद नहीं, प्रदेश बंद लिखना था, मैंने प्रकृति लिखवाया ना, प्रकृति प्रकृति की, हाँ प्रकृति वाली बात है, हाँ उसमें प्रदेश का बंटवारा हमने देखा था, प्रकृति बराबर है, हाँ तो 8 प्रकृतिक, 7 प्रकृतिक, 6 प्रकृतिक और 1 प्रकृतिक। एक प्रकृतिक बंध उपशांत मोह आदि 3 गुण स्थानों में होता है, यानी 11वें, 12वें, 13वें। किंतु जब एक प्रकृतिक बंध होता है तब बंटवारे का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए मूल में इसका उल्लेख नहीं किया है बंटवारे का प्रश्न, क्योंकि पूरा का पूरा समय प्रबद्ध उसी में चला जाएगा, सातावेन्य में। 6 प्रकृतिक बंध सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में होता है, क्षपक हो या उपशामक हो, तथा 7 प्रकृतिक बंध प्रथम प्रथमादि 9 गुण स्थानों में, प्रथमादि 9 गुण स्थान पहले से लेकर 9वें तक, और 8 प्रकृतिक बंध प्रथमादि 7 गुण स्थानों में, यानी तीसरा छोड़कर, प्रथमादि 7 कहा परंतु उसे 6 ही गुणस्थान हो गए, तीसरा छोड़कर प्रथमादि 6 हो जाएगी उसमें। हाँ ऊपर से 1, 2, 3, 4 में, हाँ 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 इसीलिए 7 प्रकृतिक का मोहनीय बंध रहे ना, वहां तो ठीक है तीसरे को इंक्लूड करके प्रथमादि 9 कहा वो बराबर था, पर 8 प्रकृतिक बंध प्रथमादि 7 का है ना, तो प्रथमादि 6 हो जाएगी और तीसरा छोड़कर आयु बंध के काल में होता है, इसलिए पिछले इन 3 प्रकार के बंधों में से पिछले ने 6 वाला, 7 वाला और 8 वाला अपने अपने योग्य स्थानों में जब जो बंध होता है तब बंध को प्राप्त होने वाले कर्म कर्म प्रदेशों का विभाग किस क्रम से होता है यह कारण पूर्वक यहाँ बताया गया है। 8 कर्मों का जितना स्थितिबंध होता है उनमें आयु कर्म का स्थितिबंध सबसे स्तोक है, क्योंकि इसका जघन्य स्थितिबंध अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट स्थितिबंध 33 सागर है। आयु इन जनरल बात करने है ना, कौन सी आयु ये यहाँ का विषय नहीं है। तो जघन्य अंतर्मूर्त यानी जो लब्धि अपर्याप्त की आयु अंतर्मूर्त वाली उसको लेना और उत्कृष्ट 33 सागर वाला, इसलिए इसमें निषेक रचना सबसे अल्प है। यही कारण है कि निषेक रचना ने नंबर ऑफ निषेक कितने बनेंगे, तो जितनी स्थिति होगी उतने बनेंगे, आयु की जितनी स्थिति है उतने निषेक बनते हैं, और अन्य कर्मों में आबादा छोड़कर उतने निषेक बनते हैं। इसलिए कहते हैं निषेक कम बनते हैं ना, इसमें सबसे अल्प है निषेक रचना, सबसे अल्प है। यही कारण है कि इसे बंध के समय सबसे अल्प भाग मिलता है। नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, इसलिए इन दोनों कर्मों के को समान भाग मिलकर भी आयु कर्म के भाग से बहुत मिलता है। इन कंपैरिजन वहां ऐसा नहीं लेना है कि 33 से और 20 कोड़ा कोड़ी कितने संख्यात गुणा होता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं विशेष अधिक, क्योंकि उन बेसिक में एक भाग निकालकर समान भाग किए थे, और जो एक भाग बाकी निकाला था उसके बहुभाग बहुभाग बंटवारे में दिए थे। इसलिए कितने गुना है उसके अनुसार प्रदेशों का बंटवारा नहीं होता है। इसलिए दोनों कर्मों में समान है और आयु कर्म से बहुत है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का स्थिति बंध 30 कोड़ाकोड़ी सागर यानी उत्कृष्ट स्थिति बंध की बात है। इसलिए इन तीन कर्मों को परस्पर समान भाग मिलकर भी नाम और गोत्र कर्म के भाग से बहुत मिलता है। यद्यपि वेदनीय कर्म का स्थितिबंध भी 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है, तथापि सुख दुख के निमित्त से इसकी निर्जरा सर्वाधिक होती है। कारण क्या बताए, देखो वेदनीय कर्म का बंध तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर है, फिर भी उसकी निर्जरा सभी सबसे अधिक है, अतः इसे मोहनीय कर्म से भी अधिक द्रव्य मिलता है। निर्जरा ने उदय निर्जरा मोक्ष मार्ग वाले निर्जरा मत समझना, खिरने वाले परमाणुओं की संख्या ज्यादा है। मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध 70 कोड़ाकोड़ी सागर है। हम देखते हैं ना उसकी उदीर्णा होकर अधिक परमाणु फिरते हैं उसके, क्योंकि सुख दुख के निमित्त से उदीर्णा अधिक होगी उसकी, तो उसकी निर्जरा ने उदय में आने वाले द्रव्य भी बहुत हो गए। मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध 70 कोड़ाकोड़ी सागर है। वो दर्शन मुनि का चारित्र मुनि है, ये हमारा यहाँ का विषय नहीं है, मोहनीय इन जनरल है, अतः इसे ज्ञानावरणादि के द्रव्य से बहुत द्रव्य मिलता है। उत्तर प्रकृतियों की जब बात आएगी ना, तो मूल प्रकृतियों का जो हिस्सा उसमें आया है फिर उसमें से बंटवारा होगा, वो अभी का विषय नहीं अपना। अभी तो मूल प्रकृतियों में कितना जाता है उतना देगा। अगर हमको समय प्रबद्ध का साधारण कहना है तो 8वां भाग कहेंगे, उसमें हिना दिखता है। पनीर जनरल जब हिसाब करें और जब 7 कर्म बनते हैं तो समय प्रबद्ध का 7वां भाग कहेंगे। तात्पर्य यह है कि वेदनीय कर्म के सिवा जिस कर्म के अपने अपने स्थितिबंध के अनुसार जितने निषेक होते हैं उसी हिसाब से उस कर्म को द्रव्य मिलता है। मात्र यह विवक्षा वेदनीय कर्म पर लागू नहीं होती, इसका कारण पहले दे ही आए हैं। अब इसमें जो 24 संयोग द्वारों के द्वारा इसकी चर्चा होगी, तो ये 24 संयोग द्वार यहाँ 3 नंबर के पृष्ठ पर बताया है। देखो इस अर्थ पद के अनुसार यहाँ ये 24 संयोग द्वार होते हैं, यथा स्थान प्ररूपना, यानी इनके स्थानों की बात बताएंगे, फिर सर्वबंध, नो सर्वबंध, सर्व में जो मैक्सिमम 8 प्रकृति वाला बंध होगा तो उसका उत्कृष्ट प्रदेश बंध, तो सर्वबंध, उसके जब जब बात आएंगे तब हम आगे उसके अर्थ देखेंगे। नो सर्वबंध, उत्कृष्ट बंध, अनुत्कृष्ट बंध, जघन्य बंध और अजघन्य बंध से लेकर अल्प बहुत्व तक, वो बाकी कौन से बीच में है वो विशेषार्थ में बताएंगे अभी, तथा ये सब 24 संयोग द्वार होने के पश्चात क्या क्या कहेंगे। भुजगार बंध, भुजगार में क्या होता है, पूर्व जो प्रदेश बंध से बढ़कर प्रदेश बंध होगा तो भुजगार कहेंगे, घटकर होगा तो अल्पतर कहेंगे, उतना का उतना होगा तो अवस्थित कहेंगे, और फिर अवक्तव्य। अवक्तव्य भले वो स्थिति का हो, अनुभाग का हो, या प्रदेश का हो, प्रकृति का हो, तो अवक्तव्य तो अवक्तव्य, बंध नहीं हो रहा था और बंध हो रहा है। देखो इसमें जो भुजगार वगैरह की बात होगी तो उसमें तो बताएंगे बाद में, योग ज्यादा होता है तो भुजगार हो जाएगा, यानी योग के अनुसार प्रदेश बंध में डिफरेंस पड़ेगा, तो उसमें क्या क्या बातें होगी। भुजगार बंध, फिर पदनिक्षेप, पदनिक्षेप में क्या बताते हैं याद है आपको, यानी उत्कृष्ट वृद्धि या उत्कृष्ट हानि या उत्कृष्ट अवस्थान, या फिर जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि या जघन्य अवस्थान, और वृद्धि बंध में क्या कहेंगे, कितने प्रकार के होगी बोलो अभी,
छह प्रकार की होगी, अभी प्रदेश बंद है, ये अनंतों का मामला है। स्थिति बंद में चार प्रकार देखे थे, असंख्यात गुणा तक था हुँ? और यहाँ कैसे होगा? हाँ, छह स्थान वाली होगी, ख्याल में आती पद, क्योंकि प्रदेश में कितने अधिक प्रदेश मिलेंगे उसकी बात है। अध्यवसान समुदाहार, जैसे अभी हमने अभी अभी देखा था ना, अनुभाग बंद के अध्यवसान स्थान देखे थे, और इसमें अध्यवसान ने प्रदेश बंद के कारणभूत परिणामों को यहाँ अध्यवसान स्थान कहेंगे, उसकी चर्चा यहाँ होगी, जब होगी तब उसकी चर्चा करेंगे। अच्छा अच्छा, असंख्यात गुना होगा, सॉरी सॉरी, बराबर है, चार ही वृद्धि, बराबर बताए, क्योंकि योगों में चार वृद्धि होती है, चार ही वृद्धि, बराबर है, चार वृद्धि होगी। प्रदेशों की संख्या अनंत है, परंतु वृद्धि चार गुना ही होगी। हाँ बराबर। यहाँ 24 संयोग द्वारों का निर्देश करते समय प्रारंभ के साथ वो जघन्य अजघन्य तक बताए ना, और अंत का एक अल्पभूतव गिनाया है, मध्य के शेष ये है, उसमें क्या क्या कहेंगे? सादी बंद, अनादि बंद, सादी बंद प्रकृति, प्रदेश में कैसे सादी, प्रकृति में तो समझ में आते हैं, प्रदेश में सादी कैसा कहेंगे? प्रदेश बंद नहीं था और चालू हुआ, ऐसा नहीं, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट लगाएंगे उसमें, उत्कृष्ट में सादी अनादि लगाएंगे, अनुत्कृष्ट में सादी अनादि लगाएंगे, जघन्य में सादी अनादि लगाएंगे, अजघन्य में सादी अनादि लगाएंगे, इस तरह से। तो सादी बंध अनादि बंध, ध्रुव बंध अध्रुव बंध, हाँ जिसमें वो बंध विच्छित होती उसमें भी फिर वो अध्रुव कह देंगे, उसमें सादी भी कह सकते हैं। फिर स्वामित्व, फिर एक जीव की अपेक्षा काल, अंतर, सन्निकर्ष, सन्निकर्ष के यानी एक का उत्कृष्ट है तो अन्य का क्या होगा उसकी बात है, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, भागा भाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर और भाव। अल्पभूत तो ऊपर बताया था, 24वां। आगे इन 24 संयोग द्वारों का आश्रय लेकर प्रदेश बंध का विचार कर पुनः उसका भुजगार बंध, पद निक्षेप, वृद्धि, अध्यवसान समुदाहार और जीव समुदाहार, इन द्वारा और इनके अवांतर अनियोगों द्वारों के आश्रय से विचार किया गया है। क्योंकि हर एक में 24-24 नहीं होते हैं, कहीं कितने होते कहीं कितने होते हैं, जैसे भुजगार में हमने 13 देखे थे है ना, पद निक्षेप में केवल 3 ही देखे थे, समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पभूतव, कुछ इस तरह से। अब पढ़ेंगे एक एक। पहला नंबर का स्थान प्ररूपना है, 24 संयोग द्वारों में से ये प्रदेश बंध में स्थान बताएंगे। तो स्थान प्ररूपना में ये दो अनुयोग द्वार होते हैं, योग स्थान प्ररूपना और प्रदेश बंध प्ररूपना, क्योंकि योग स्थान से प्रदेश बंध डायरेक्टली रिलेटेड है। तो योग स्थान प्ररूपणा में अभी किसका योग कितना है वो बता रहे हैं कि सूक्ष्म अपर्याप्त, यानी सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त चाहिए, क्योंकि एकेंद्रीय में सूक्ष्म जीव होते हैं, तो सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव के जघन्य योग सबसे सुख है, उसमें भी जघन्य लिया उसका, क्योंकि हर जीव के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के भेद हो गए जुदे जुदे, तो इसका जघन्य सबसे कम है, एक नंबर डालो। हमने नंबरिंग किया था लास्ट टाइम, आपकी भी है ना, इससे बादर अपर्याप्त, अभी बादर भी एकेंद्रीय लेना, बादर अपर्याप्त जीव के जघन्य योग असंख्यात गुणा है। ये हमने योगों के जो योग स्थान देखे थे कर्मकांड पुस्तक में भी देखे थे, आपको याद होगा तो। चौरासी कितने बताए थे उसमें? 84 कुछ थे, 14 जीव समास है ना, तो उसमें जघन्य उत्कृष्ट मध्यम वगैरह ऐसे कुछ होगे। हाँ अभी देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। चौरासी है ना। हाँ, मुझे वो कर्मकांड की बात याद है यहाँ की। हाँ, परिणाम ये तीन तीन प्रकार के होते हैं ना। हाँ, चौसठ और उसमें जगन्य उत्कृष्ट। हाँ देखो, यहाँ जगन्य योग की बात हो रही है। पहले पहले दो नंबर हो गया, तीन नंबर पर इससे द्विंद्रिय पर्याप्त, फिर तीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त और पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त जीव के जघन्य योग उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा है। ये सात लिए ना अपर्याप्तों के, सात जीव समास लिए। इससे अब ये संगी अपर्याप्त के बाद लौट कर फिर सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव के उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है। संगी अपर्याप्त के जघन्य से एकेंद्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है। इससे मादर एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव के उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है। यानी सूक्ष्म अपर्याप्त और मादर अपर्याप्त उत्कृष्ट यहां दो लिए। फिर अभी सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के जघन्य योग, यहाँ जघन्य योग लिया क्योंकि हमने पहले सात जीव समास देखे थे उसमें सभी अपर्याप्त जीव लिए थे। ना ना अभी ना बराबर है उत्कृष्ट योग बराबर, क्योंकि देखो पहले सात होने के बाद आठ और नौ क्या लिए, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त और बाद एकेंद्रिय अपर्याप्त के उत्कृष्ट दे दिए। उसके बाद फिर दसवें नंबर पर सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के, अभी पर्याप्त उनको लिया नहीं था तो सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त के जघन्य योग असंख्यात गुणा है। इससे बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के जघन्य योग असंख्यात गुणा है। अभी एकेंद्रिय में फिर लौट कर वापस गए, इससे सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है और इससे बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है। अब बाद में आगे पर्याप्त पर्याप्त को चलेंगे। इससे चौदह नंबर पर द्विंद्रिय अपर्याप्त लिया, उत्कृष्ट लेना है ना उनके, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट योग ने एकेंद्रिय उनको यहां तक ले लिया पूरे को। अभी द्विंद्रिय अपर्याप्त, तीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त और पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त जीव के उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा है। यहां तक 18 नंबर आ गए हमारे। इससे इन्हीं पर्याप्त जीवों के, इन्हीं पर्याप्त है ना, अभी हमने द्विंद्रिय पर्याप्त, तीन्द्रिय पर्याप्त वगैरह लेना, जघन्य योग उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा है। यानी इन्हीं के पर्याप्त है कौन, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। उसको हमने नंबरिंग किया था 19, 20, 21, 22, 23। उन्हीं पर्याप्त जीवों के जघन्य योग उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा है। इससे इन्हीं पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा है। देखो इन्हें संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का जघन्य से फिर लौट कर 24 पर किसको आया हम, द्विंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा है, उसके जघन्य से इसका उत्कृष्ट। तो 24, 25, 26, 27, 28 हमने नंबरिंग किया था उसको। इस प्रकार यहाँ एक एक जीव के योग का गुणकार पल्ल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। उन्होंने डायरेक्ट जघन्य में उपपाद को लिया और उत्कृष्ट में परिणाम वालों को ले लिया, परंतु उसमें भी हरेक में, यहाँ तो उन्होंने केवल 28 भेद बताए, तो 28 त्रिक करना पड़ेगा ना, 84 हो जाएंगे, क्योंकि हरेक के उपपाद योग, एकांत वृद्धि और फिर परिणाम योग। इस तरह से उपपाद योग कब होता है मालूम है ना, वो जन्म का पहला समय। हाँ, जो पहला समय जो होता है वो उपपाद योग कहलाता है। दूसरे समय से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक एकांत रूप से वृद्धि होती है, उसको एकांत वृद्धि योग कहते हैं। और बाद में परिणाम योग में बढ़ता भी है घटता भी है उतना भी रहता है, वो परिणाम योग होते है। हरेक में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ऐसे भेद हो गए। यहाँ 28 बताए उन्होंने। इस प्रकार यहाँ एक एक जीव के योग का गुणकार, ये असंख्यात गुणा जो कहा है वो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण उससे गुणकार करना है। विशेषार्थ, मन वचन और काय का आलंबन लेकर जीव में जो आत्म प्रदेश परिस्पंद रूप शक्ति उत्पन्न होती है उसे योग कहते हैं। यह योग आलंबन के भेद से तीन प्रकार का है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। यह सामान्य लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव से लेकर सहयोगी केवली तक सब संसारी जीवों के उपलब्ध होता है, यानी योग हरेक को पाया जाता है। उसमें भी सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त जीव के यह सबसे जघन्य होता है और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट होता है। ये तो इन जनरल बात बताई, उसमें भी उन्होंने कहां से किसके जघन्य से किसका उत्कृष्ट कैसे होता है वो बताया भी। बीच में जीव समास के भेद से जघन्य और उत्कृष्ट योग किस क्रम से होता है यह मूल में बताया ही है। अब प्रदेश अल्पभूत्व, आपको 84 स्थान देखने हैं क्या? उसमें देखने पड़ेगा कर्मकांड के पुस्तक पहली योग स्थान, आप उसमें से एक पुस्तक रखिए। हाँ, दो पुस्तकें लेना वहाँ कर्मकांड की। नहीं नहीं नीचे ही है, लेफ्ट साइड में। हाँ अंदर नहीं, अभी निकालें। ये दो ब्लू पुस्तकें हैं ना। हाँ हाँ, वो तीसरी भी कौन सी है देख लेना, उसके बाजू में एक वो, ये मेरी है, वो भी देख लो जरा, वहाँ जो पड़ी है वो। वो कर्मकांड है कि जीवकांड है? अच्छा, आपको लेना है तो उधर वो खोके में ढूंढना पड़ेगा, मगर अभी मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं आपको, या ढूंढारी में से देखना आप, इसके पीछे ढूंढारी के है। हाँ आपको मिलेगा। ऊपर नहीं, नीचे नीचे। हाँ नीचे कहीं मिलेगा तो। हाँ नहीं नहीं देखते हैं, अभी देखेंगे, मैं तब तक निकालती हूँ। योग स्थान देखना है ना, प्रदेश बंध का वर्णन, योग स्थान जगने से उत्कृष्ट जीवों के योग सांग 234 पर है। 234 234 निकालना, एक मिनट, पुस्तक में से निकालो तब तक। मैंने बोला उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। मैं 237 निकालना। हम 233 नंबर की गाथा, 233 वगैरह पेज हम यहाँ पढ़ते, यहाँ लिख के रखना है तो लिख के रखो। कर्मकांड पुस्तक एक, अपने मेरे अनुवाद वाला पृष्ठ है 237। हाँ और गाथा 233 ऑनवर्ड्स। टू थर्टी सेवन पेज निकालना है आपको। अभी हमने जो विशेषार्थ पढ़ा ना, विशेषार्थ पढ़ा ना, उसके बाजू में लिख के रखो 240 गाथा तक है, 233 से 240। कर्मकांड पुस्तक एक पृष्ठ 237 से 241 तक। पढ़ते अभी 241 तक है, चार पेजेस है उसमें। अभी यहाँ पढ़ते अभी हम 237। आपको वो संदृष्टि देखने की जरूरत नहीं, उन्हें सूक्ष्म बाधा द्विंदी तिंद्रिय चतुर्णी असंगी संगी की संदृष्टि बनाई है, उसके नीचे से ही पढ़ेंगे हम। और भाषांतर करते समय मैंने 1, 2, 3, 4 नाम दिया, उसके नंबरिंग किए हैं। तो एक नंबर पर देखो, सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त जीव का जघन्य उपपाद योग स्थान सबसे अल्प है। वहां तो केवल जघन्य और उत्कृष्ट इसकी बात की थी, अभी उसमें से कौन सा उपपाद है के परिणाम है के एकांत वृद्धि उसकी बात की। उससे सूक्ष्म निगोद निवृत्ति अपर्याप्त जीव का, लब्धि अपर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्त में भी भेद किए उन्होंने। जघन्य उपपाद योग स्थान पल्ले के असंख्यातवे भाग गुणा है। अभी नीचे तीसरा नंबर देखो, उससे सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान पल्ले के असंख्यातवे भाग गुणा है। पहले बीच में निवृत्ति अपर्याप्त दिया था ना, उससे बादल लब्धि अपर्याप्त का जगन उपपाद योग स्थान पल्ले के असंख्यातवे भाग गुणा है। या उन्होंने उपपाद में उत्कृष्ट बताया, उनको डायरेक्ट बताना था इसलिए वहां सबके पहले अपर्याप्त लिए थे, सातों के अपर्याप्त लिए थे, क्योंकि जगन्य उपपाद और उत्कृष्ट परिणाम में मिलकर उन्होंने वो अल्पभूत लगाया था। यहाँ हरेक के अलग अलग भेद बताए इसमें बीच में, इसलिए थोड़ा डिफरेंस यहाँ होगा। ये चार तक आ गए ना। अब नेक्स्ट पेज, पांचवे नंबर पर, उससे सूक्ष्म निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट उपाद योग स्थान पल्ले के असंख्यातवे भाग गुना है। उससे बादर निवृत्ति अपर्याप्त का जघन्य उपपाद योग स्थान पल्ले के असंख्यातवे भाग गुना है। ये हर जगह पल्ले के असंख्यातवे भाग गुना है, उसको हम छोड़ देते हैं, हम उसको नंबरिंग देखेंगे केवल। सबके उपपाद लिए, जघन्य उत्कृष्ट वगैरह की बात की, तो बादर निवृत्ति अपर्याप्त का जघन्य उपपाद। फिर सातवें नंबर पर, बादर लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट, ऊपर बादर निवृत्ति का जघन्य था, यह बादर लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट उपपाद लिया। फिर आठवें नंबर पर, द्विंद्रिय लब्धि अपर्याप्त का जघन्य उपपाद। अब नौ नंबर, उससे बादर एकेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट उपपाद योग था। केवल उपपाद में लगाना था ना जघन्य उत्कृष्ट में, इसलिए यहाँ की नंबरिंग अलग है। उससे द्विंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त का जघन्य उपपाद योग स्थान असंख्यात गुना। इससे द्विंद्रिय लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट, निवृत्ति का जघन्य, लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट। फिर 12 नंबर पर, तीन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त का जघन्य उपपाद योग स्थान अनुक्रम से पल्ले के असंख्यात विभाग गुना है। अभी वो तो आगे वो पल्ले के असंख्यात भाग गुणा नहीं कहेंगे, डायरेक्ट नंबरिंग करेंगे। फिर उससे द्विंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट, तीन्द्रिय निवृत्ति अपर्याप्त का जघन्य, उससे तीन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट, फिर चतुरिंद्रिय लब्धि अपर्याप्त का जघन्य, उससे असंख्यात गुणा, उससे तीन्द्रिय निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट। यानी ऊपर का एक लेते लब्धि अपर्याप्त का और नीचे का निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट लेते, फिर चतुर्निय निवृत्ति अपर्याप्त का जघन्य, सभी का उपपाद योग स्थान चल रहे, उससे चतुरिंद्रिय लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट, बाद में असंगी पंचेन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त का जघन्य उपपाद योग स्थान, और उससे चतुरिंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट, फिर असंगी पंचेन्द्रिय निवृत्ति अपर्याप्त का जघन्य उपपाद योगस्थान। अभी यहाँ योगस्थान, अभी संगी पंचेन्द्रिय को छोड़ा, अभी नहीं लिया। उससे असंगी लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट पहले लिया, फिर संगी लब्धि अपर्याप्त का जघन्य उपपाद योगस्थान, वो पल्ले के अंशक क्या भाग गुना है। उससे असंगी निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट, उससे संगी निवृत्ति अपर्याप्त का जघन्य उपपाद योग स्थान, उससे संगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट उपवाद योग स्थान पल्ले के असंख्यात पे भाग गुणा है। अभी ये सभी जो अभी कहते हैं 27 हो गए, क्योंकि उसमें बीच में निवृत्ति अपर्याप्त और ऐसे ले लिया, परंतु अन्य हाँ, परंतु यहाँ संगी को क्या छोड़ा हमने, संगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट लिया, परंतु संगी निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट नहीं लिया उन्होंने, वो नीचे बताया उसमें, वो बाद में बताया 28 नंबर को, जो संगी पर्याप्त का, संगी पंचेंद्रिय का निवृत्ति अपर्याप्त लेना था, उसके बीच में उन्होंने सूक्ष्म एकेंद्रिय का एकांत अनुयोग वो बीच में लिया, उसमें इसका उपवाद अभी बाकी था, ख्याल में ना, 28 होने चाहिए थे, पर हाँ सत्ताईस के हाँ। और उसमें क्या है, हर एक के निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त ऐसे भेद किए, हाँ यानी वो केवल 7 भेद के बदले वो 14 भेद हो गए, अपर्याप्तों के 14 भेद हो गए, मैंने अपर्याप्तों में ही अभी पर्याप्तों में गए ही नहीं थे। देखो तो 28 नंबर पर क्या लिया, सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त का जघन्य, जघन्य वो भी लिया, जघन्य एकांत अनुवृद्धि योग स्थान पल्ले के असंख्यात विभाग गुणा है। अब 29 नंबर पर संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान पल्ले के असंख्यात विभाग गुणा है। अब बाद में भी बीच में सूक्ष्म एकेंद्रीय का एकांत अनुवृद्धि लिया ना, अभी बाकी सबके एकांत अनुवृद्धि ले लेंगे, उससे सूक्ष्म एकेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त का जघन्य एकांत अनुवृद्धि योग स्थान असंख्यात गुणा है, उससे बांदर एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त का और बांदर एकेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त का जघन्य एकांत अनुवृद्धि योग स्थान अनुक्रम से, यानी एक से दूसरे, दूसरे से आगे वाला। उसके बाद सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त और सूक्ष्म एकेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट एकांत अनुवृद्धि स्थान, वो असंख्यात गुना असंख्यात गुना, इससे बांदर एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त और बांदर एकेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त, उसके उत्कृष्ट एकांत अनुवृद्धि स्थान, वो भी असंख्यात गुना असंख्यात गुना। अब उसके बाद क्या कहते कि ये इसके बीच में ऐसे योग स्थान है कि जिसका कोई स्वामी नहीं है, यानी बहुत बड़ा गैप है बीच में, हाँ उसके ये 36 के बाद वहां अंतर है, यानी बांदर एकेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट एकांत अनुवृद्धि लिया, अब उसके बाद इन स्थान नीचे के देखो, जिसका कोई स्वामी नहीं है, नीचे से दूसरी तीसरी लाइन, इन स्थानों को उल्लंघन करने छोड़कर सूक्ष्म एकेंद्रिय बांदर एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त के जघन्य और उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान अनुक्रम से पल्ले के असंख्यात विभाग गुना है। ऊपर कौन सा लिया था, निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट एकांत अनुवृद्धि योग स्थान लिया था, कौन से 36 नंबर पर, हाँ अभी परिणाम, यानी एकांत वृद्धि से भी परिणाम योग स्थान असंख्यात गुणा हो जाते हैं, और उसमें किसको लिया, सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त का जघन्य, फिर बांदर का जघन्य, फिर सूक्ष्म का उत्कृष्ट, फिर बांदर का उत्कृष्ट, लब्धि अपर्याप्त उनके ही लिए सब। फिर दूसरा अंतर आया यहाँ पर, फिर बांदर एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान, उसके बाद जो अभी हमने ऊपर देखा था ना बादर का उत्कृष्ट, अभी 40 नंबर पर देखा था, उसके बाद क्या है, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान है कि जिसका कोई स्वामी नहीं है, अभी इसके बाद पर्याप्तों की शुरू हो जाएगी, उसमें कैसे कहेंगे, सूक्ष्म केंद्रीय और बादर केंद्रीय पर्याप्त के जघन्य और उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान, यानी वो कैसे कहेंगे, सूक्ष्म पर्याप्त का जघन्य, बादर का जघन्य, सूक्ष्म का उत्कृष्ट, बादर का उत्कृष्ट, 41, 42, 43, 44 हो गए। उसके बाद तीसरा अंतर है, यानी वहां पर भी जगत श्रेणी के असंख्या पे भाग योग स्थान है जिसका कोई स्वामी नहीं, यानी उतना योग भी नहीं होगा, उतना समय प्रबद्ध भी नहीं होगा उसका। उसको छोड़कर अभी किसको लेना, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय के लब्धि अपर्याप्त के जघन्य और उत्कृष्ट एकांत वृद्धि योग स्थान, ये 10 लेना। वो अनुक्रम से असंख्यात गुना असंख्यात गुना, यानी 45 से लेकर 54 तक। अब उसके बाद चौथा अंतर है, 241 पेज, यानी यहाँ पर भी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान छोड़कर उसके बाद फिर द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान, ये 10 अनुक्रम से पल्ले के असंख्यात विभाग गुना है। यानी सबके जघन्य ले गए, सबके उत्कृष्ट ले लेंगे। फिर यहाँ पांचवा अंतर है, यानी लास्ट में किसको लिया था, संगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त का उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान। उसके बाद फिर जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान जिसका कोई स्वामी नहीं है। अभी तो सारे लब्धि अपर्याप्त लिए थे, अभी यहाँ द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त जीवों का वो लब्धि अपर्याप्त लिए थे, ये निवृत्ति अपर्याप्त। देखो जब लब्धि अपर्याप्त में एकांत वृद्धि स्थान जो कहेंगे, वहां तो कोई शरीर पर्याप्ति पूरी होने वाली नहीं है, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, तो उसमें आयु का 1/3 लेना, वो वहां तक एकांत वृद्धि होगी, परिणाम योग स्थान बाद में हो गए। तो यहाँ द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, संगी के निवृत्ति अपर्याप्त जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट एकांत अनुवृद्धि स्थान योग स्थान वो 10 है, वो अनुक्रम से असंख्यात गुना असंख्यात गुना, ये 74 तक आए। फिर छठवां अंतर, अभी तक तो निवृत्ति अपर्याप्त तक आ गए थे, उसके बाद फिर असंख्यात स्थान छोड़ देना जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। उसके बाद द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय अभी पर्याप्तों के लिए उनके जघन्य और उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान, पहले पांचों के जघन्य लिए फिर पांचों के उत्कृष्ट लेना, यानी 75 से 84 तक। इस तरह योगों के 84 स्थान कहे, ये स्थान योगों के स्थान है, उसके अभिभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं उसकी बात यहाँ बताए। हाँ, श्रेणी के असंख्यात विभाग तो अंतर थे बीच में, टोटल स्थान भी श्रेणी के असंख्यात विभाग ही है, क्योंकि असंख्यात भी वेरिएशंस बहुत है ना। अभी अपने पेज पर आना, अपने धवला में आना, छठी पुस्तक चौथा पेज। तो हमने ये तीन प्रकार के जो योग स्थान है, उपपाद योग स्थान, एकांत बुद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान, उसकी बात हमने कर्मकांड पुस्तक के आधार से देखी। अब प्रदेश अल्प बहुत्व देखो, यहाँ पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, प्रदेश अल्प बहुत्व का विचार करने पर सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव के जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। जितना योग का अल्प बहुत्व है वैसा ही इसका भी होगा। प्रदेशाग्र कहने से बंधने वाले, यानी समय प्रबद्ध जिसको कहेंगे, समय प्रबद्ध में नंबर ऑफ परमाणु, तो किसको लिया, सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव के जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। इनसे बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव के जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यात गुणे हैं। हमने देखा था ना, ये सातों के अपर्याप्त अपर्याप्त को लिए थे, यहाँ लब्धि अपर्याप्त के निवृत्ति अपर्याप्त उसकी चर्चा नहीं की, इन जनरल बात है। इनसे द्विंद्रिय अपर्याप्त, तीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय कॉमा नहीं चाहिए, अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय के बाद अपर्याप्त, दोनों के बीच में कॉमन नहीं, कॉमा नहीं चाहिए, तो चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय असंज्ञ अपर्याप्त और पंचेंद्रिय संज्ञ अपर्याप्त जीव के जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यात गुणे हैं। इस प्रकार आगे योग अल्पभूत्व के समान यह अल्पभूत्व जानना चाहिए। उसमें क्या देखे थे हमने, पहले तो सात भेद किए थे। देखो नीचे पीछे के पेज पर चलो, पहले सातों के अपर्याप्त लिए थे, बीच में आठ और नौ डाले थे, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट और बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट लिया। फिर सूक्ष्म पर चले, फिर सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त का जघन्य, फिर बादर एक इंद्रिय पर्याप्त का जघन्य, फिर सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट, फिर बादर एक इंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट, उसके बाद द्विंद्रिय अपर्याप्त, इंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, असंगी और संगी अपर्याप्त के उत्कृष्ट योग, वो असंख्यात गुणा। बाद में इन्हीं के ने द्विंद्रिय से संगी तक जघन्य योग असंख्यात गुणा पर्याप्तों के, और पर्याप्तों के उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुणा। यहाँ तो इन जनरल बात जघन्य और उत्कृष्ट इतनी बात हो, इस जघन्य में उपपाद होगा, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान। तो जैसे योगों का अल्पभूत्व, ऐसा ही यहाँ पर प्रदेशों का अल्पभूत होगा। किंतु इतनी विशेषता है कि एक एक जीव के प्रदेश गुणकार पल्ल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। वहां पर भी उतना ही स्थान है पल्ल्य के असंख्यात विभाग, यहाँ पर भी प्रदेशों में भी पल्ल्य का असंख्यात विभाग विशेषाल। पहले योग अल्पभूत्व का कथन कर आए हैं, प्रदेश अल्पभूत्व उसी के समान है। यहाँ प्रदेश अल्पभूत्व से उत्तरोत्तर कितने गुणे प्रदेशों का बंध होता है यह बतलाया है। सबसे जघन्य योग सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त के होता है, अतएव इस योग से इसी जीव के सबसे जघन्य प्रदेश बंध होता है। इससे बादर एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त के जघन्य योग असंख्यात गुणा होता है। इसलिए सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त के जितने कर्म परमाणुओं का बंध होता है उनसे असंख्यात गुणे कर्म परमाणुओं का बंध होता है। पहले योग अल्पभूत बतलाते समय असंख्यात गुणे में असंख्यात पद का अर्थ पल्लोपम का असंख्यात भाग लिया गया है यह कहे आए हैं, वैसे ही इस अल्पभूत्व में भी असंख्यात गुणे में असंख्यात पद का अर्थ पल्लोपम का असंख्यात भाग लेना चाहिए। इस प्रकार संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा प्रदेश बंध होता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार अल्पभूत्व समाप्त हुआ। देखो 24 संयोग द्वारों में से हमने क्या क्या देखा, पहले स्थान प्ररूपणा में योगस्थान प्ररूपणा और प्रदेश बंध प्ररूपणा देखे, ये एक नंबर की हो गए। अभी उसी में योगस्थान प्ररूपणा, अभी तो किसके स्तोक है बहुत है वो बात हुई। अब योगस्थान प्ररूपणा में ये 10 संयोग द्वार ज्ञातव्य है। अभी योगस्थान पूरा नहीं हुआ है, योगस्थान की प्ररूपणा अभी चलेगी। पहले तो केवल उसमें अल्पभूत्व बताया, योगस्थान में अल्पभूत्व बताया, अब यहाँ कहते हैं कि योगस्थान की प्ररूपणा यहाँ से बताएंगे। देखो अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा कौन कौन से है 10 संयोग द्वार, वो यहाँ पहले लिस्ट बताते हैं। यानी योगों की अविभाग प्रतिच्छेद की प्ररूपणा करेंगे, वर्गणा प्ररूपणा, ये सब जैसे हमने कर्मों में देखते हैं ना, वर्ग वर्गणा स्पर्धक अनुभाग में देखा था, वैसे ही योग स्थानों में भी होगा। एक योग स्थान में क्या क्या बातें होती है उसकी बात यहाँ हो रही है। वहां तो कर्म परमाणु को एक वर्ग कहा था, उसमें अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, यहाँ क्या लेंगे, जीव प्रदेशों को। योग किस में होगा, जीव के प्रदेश में। वहां कर्म परमाणु तो हीनाधिक होते थे, यहाँ तो जीव प्रदेश तो असंख्यात, जो लोक प्रमाण असंख्यात वो तो कांस्टेंट है। तो जिन प्रदेशों में जघन्य योग होगा उसको एक वर्गणा कहेंगे, है ना, अभी बताते हैं यहाँ पर। तो अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा, वर्गणा प्ररूपणा, स्पर्धक प्ररूपणा, अंतर प्ररूपणा, स्थान प्ररूपणा। अंतर में स्पर्धकों में भी अंतर होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान में भी अंतर होता है, योगों का जितना अंतर होगा उसको कहेंगे। फिर स्थानों की प्ररूपणा चलेगी, अनंत रोपनिधा, परम्परोपनिधा, फिर समय प्ररूपणा, यानी कितने समय तक वही योग रहता है वो समय प्ररूपणा भी होगी, वृद्धि प्ररूपणा और अल्पभूतव। उसमें से अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा, यानी स्थान प्ररूपणा, योग स्थान प्ररूपणा में नंबर एक, अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा में जीव के एक एक प्रदेश में कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, यानी योग के अविभाग प्रतिच्छेद लेना। यहाँ पर जीव के प्रदेशों में जीव के गुण की बात नहीं, यहाँ पर योग के अविभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं। यहाँ प्रदेश कहने से परमाणु की बात नहीं है, जीव के एक एक प्रदेश में यानी योग के कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, ऐसा हो चाहिए। हम डाल के रखेंगे बीच में, योग के कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। तो कहते असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इतने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। यानी योग के जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो कितने कितने हो गए, तो असंख्यात लोक प्रमाण। वहां तो हमने कर्मों की बात अलग थी, वहां तो जीवन से अनंत गुणे तो अविभाग प्रतिच्छेद थे कर्म परमाणु में। यहाँ जीव के एक प्रदेश में योग के अविभाग प्रतिच्छेद कितने, तो असंख्यात लोक प्रमाण। विशेषार्थ, बुद्धि द्वारा शक्ति का छेद करने पर सबसे जघन्य शक्ति अंश की वृद्धि का नाम प्रतिच्छेद संज्ञा है। सर्व जघन्य शक्ति अंश का वृद्धि का अर्थ होता है, हमने देखा ना, सबसे मिनिमम योग एक लाइन में हमने रखेंगे उसको वर्गणा कहेंगे, उसमें जितनी वृद्धि होकर दूसरी वर्गणा बनेगी उसमें एक का डिफरेंस है ना, उसी को एक अविभाग प्रतिच्छेद नाम देंगे। एक अविभाग प्रतिच्छेद मिनिमम वृद्धि जितनी होगी उसको एक अविभाग प्रतिच्छेद, क्योंकि एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में एक का डिफरेंस है, वो एक किसको कहेंगे, जितनी मिनिमम वृद्धि हुई उसका नाम है एक। तो कहते बुद्धि द्वारा शक्ति का छेद करने पर सबसे जघन्य शक्ति अंश की वृद्धि का नाम प्रतिच्छेद संज्ञा है। यह वृद्धि अविभाज्य होती है, यानी जितनी वृद्धि होगी, मान लेते हमने 10 डिग्री वृद्धि, ऐसा नहीं होगा, वो अविभाज्य होती है, अतः इसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। जीव के हाँ, प्रकृति में योग शक्ति विवक्षित, क्योंकि कैसी किसकी वृद्धि की बात करें, किसके शक्ति की बात कहते हैं, तो योग शक्ति की बात है। जीव के प्रत्येक प्रदेश में इस योग शक्ति के देखने पर वह असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिच्छेदों से युक्त योग शक्ति को लिए हुए होता है, उसी को अविभाग प्रतिच्छेद कहा। प्रतिच्छेद को ही अविभाग, क्योंकि वो अविभाज्य होती है। यद्यपि यह योग शक्ति किसी जीव प्रदेश में जघन्य होती है और किसी जीव प्रदेश में उत्कृष्ट, किसी जीव के प्रदेशों में नहीं कहा, हाँ एक ही जीव के जो असंख्यात प्रदेश है उसी में किसी में जघन्य किसी में उत्कृष्ट होती है। हाँ। पर अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा विचार करने पर वह असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेदों को लिए हुए होकर भी जघन्य से उत्कृष्ट में असंख्यात गुणे अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, यानी मिनिमम भी असंख्यात लोक, और उसको असंख्यात गुणे करेंगे तो भी असंख्यात लोक ही कहेंगे, यानी किसी भी जीव प्रदेश में कितना होता है तो असंख्यात लोक प्रमाण। उदाहरणार्थ एक शुक्ल वस्त्र लीजिए, उसके किसी एक अवयव में कम शुक्लता होती है और किसी में अधिक, जिस प्रकार उस वस्त्र में शुक्ल गुण का तारतम्य दिखाई देता है उसी प्रकार जीव के प्रदेशों में भी योग शक्ति का तारतम्य दिखाई देता है। इससे विदित होता है इस तारतम्य का कोई कारण होना चाहिए, यहाँ तारतम्य का जो भी कारण है उसी का नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। यानी वो तारतम्य तो हम गिनेंगे किसमें, तो अविभाग प्रतिच्छेदों में। इन अविभाग प्रतिच्छेदों के क्रम से वर्गणा कैसे उत्पन्न होती है, आगे इसी बात का विचार किया जाता है। क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद एक एक से बढ़ते हुए जिन प्रदेशों में होता है, उन प्रदेशों को हम एक एक लाइन में दिखेंगे तो उसको हम कहेंगे उसके वर्गणा, दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा वगैरह। अब एक हो गई अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा। अब योग स्थान की दूसरी प्ररूपणा है वर्गणा प्ररूपणा। तो वर्गणा प्ररूपणा को पढ़ते हम। वर्गणा प्ररूपणा की अपेक्षा योग के असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद मिलकर एक वर्गणा होती है। क्योंकि एक प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद है। इस प्रकार असंख्यात वर्गणाएं होती है क्योंकि ये जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण होती है। इन्होंने डायरेक्ट वर्गणा बताई है परंतु एक वर्ग जिसको कहेंगे, एक प्रदेश को एक वर्ग कहेंगे। तो टोटल कितने हैं वर्ग, टोटल प्रदेश कितने हैं, तो लोक प्रमाण असंख्यात। तो एक एक वर्गणा में प्रदेश कितने हो गए, हाँ यानी जगत प्रतर का असंख्यात भाग ऐसा कुछ होगा उसमें। मैंने ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ होगी ना जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, तो उसमें वर्गणाएं होगी। एक एक स्पर्धक में भी उतनी, ऐसे स्पर्धक भी उतने। तो कहते वर्गणा प्ररूपणा उन्होंने डायरेक्ट बात बताई है कि लोक योग के असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद मिलकर एक वर्गणा होती है। क्योंकि एक एक वर्ग में असंख्यात लोक इतना है और सब मिलकर भी असंख्यात गुणा करेंगे तो भी असंख्यात लोक ही कहेंगे। इस प्रकार असंख्यात वर्गणाएं होती है क्योंकि ये जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण होती है। यहाँ तो बिल्कुल शॉर्ट में बताया है क्योंकि एक एक स्पर्धक में जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणाएं होती है और ऐसे स्पर्धक भी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण होते हैं। सब मिलकर भी टोटल वर्गणाएं सभी स्पर्धकों की भी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग कहेंगे। इसी का विशेषार्थ पहले हम प्रत्येक प्रदेशगत योग के अविभाग प्रतिच्छेदों का विचार कर आए हैं। उत्तरोत्तर वृद्धि रूप ये अविभाग प्रतिच्छेद सभी जीव प्रदेशों में उपलब्ध होते हैं। कारण कि योग सब प्रदेशों में समान रूप से नहीं उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ दाहिने हाथ से वजन उठाने पर इस हाथ के प्रदेशों में जितना अधिक खिंचाव दिखाई देता है उतना खिंचाव कंधे के पास के प्रदेशों में नहीं दिखाई देता, तथा कंधे के प्रदेशों में जितना खिंचाव दिखाई देता है उतना खिंचाव शरीर के अन्य अवयवों के प्रदेशों में नहीं प्रतीत होता। इसलिए सब जीव प्रदेशों में योग शक्ति की हीनाधिकता के कारण उसका तारतम्य किस क्रम से उपलब्ध होता है यह विचार करना पड़ता है। और इसी विचार के परिणाम स्वरूप योग का निरूपण अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक और योगस्थान। अविभाग प्रतिच्छेद तो हमने देख लिए, एक एक प्रदेश में जितने अविभाग प्रतिच्छेद है तो एक एक प्रदेश को वर्ग कहेंगे, फिर वर्गों के समूह को वर्गणा कहेंगे, एक एक अविभाग से बढ़ती हुई वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे, और एक स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक में थोड़ा बीच में योगों का अंतर होता है तो ऐसे स्पर्धक भी असंख्यात होते हैं और ये सब मिलकर एक योग स्थान होता है। तो कहते इत्यादि अधिकारों द्वारा किया जाता है, यानी योग का निरूपण, इन सब का निरूपण करेंगे तब योग का निरूपण होता है। अविभाग प्रतिच्छेदों का विचार तो किया ही है, वे जितने जीव प्रदेशों में समान रूप से पाए जाते हैं उन जीव प्रदेशों की वर्गणा संज्ञा है। हमने देखे ना जिन जिन जीव प्रदेशों में मिनिमम योग है उसको एक लाइन में हम लिखेंगे, तो उसको वो प्रदेश कुछ एक इकट्ठे एक साथ नहीं है, जहां तहां पड़े हुए है, पर जहां वो मिनिमम है उसको हम वर्गणा कहेंगे। तो उनकी वर्गणा संज्ञा है। पुनः इनसे आगे के जीव प्रदेशों में एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक पाया, इसलिए इन जीव प्रदेशों की दूसरी वर्गणा बनती है। पुनः इनसे आगे के जीव प्रदेशों में दो अधिक अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, इसलिए इन जीव प्रदेशों की तीसरी वर्गणा बनती है। ये हमको इमेजिन करना है, वो इसके आगे के यानी कुछ कंटिन्यूएशन में ऐसी वर्गणाएं नहीं पड़ी पड़ी है अंदर। इस प्रकार एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक के क्रम से उत्तरोत्तर चौथी आदि वर्गणाएं बनती है, जो जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है। इस प्रकार वर्गणाओं का विचार किया। आगे स्पर्धक का विचार करते हैं। वर्गणा क्या है वो हमने देखा। समान वर्गों के समूह को, समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले जो वर्ग है उनके समूह को वर्गणा कहा, और एक एक अविभाग से प्रतिच्छेद से बढ़ती हुई वर्गणा हमने देखी थी, उसका हम स्पर्धक कहेंगे। अब यहाँ स्पर्धक प्ररूपणा, जो योग स्थान का तीसरा नंबर का जो कथन है, स्पर्धक प्ररूपणा की अपेक्षा असंख्यात वर्गणाएं, देखो, जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण होती है, मिलकर एक स्पर्धक होता है। यानी वो जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग बार एक एक से बढ़ती हुई सारी वर्गणाएं, कितनी अधिक होती होगी, यानी वो जीव प्रदेशों के कितने अलग अलग वेरिएशंस बताए हैं, एक स्पर्धक होता है। क्यों बचता है बीच में? कोई बात नहीं, क्या कहते हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण जो वर्गणाएं हैं वो मिलकर एक स्पर्धक होता है। इस प्रकार असंख्यात स्पर्धक होते हैं, क्योंकि ये जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं। यानी एक योग स्थान में असंख्यात स्पर्धक, एक एक स्पर्धक में ये असंख्यात वर्गणाएं, और एक एक वर्गणा में असंख्यात वर्ग भी होते हैं, और एक एक वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात लोक प्रमाण। स्पर्धक विशेषात पहले जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण वर्गणाओं का विचार कराए हैं। उन सब वर्गणाओं का समुदाय प्रथम स्पर्धक होता है। इसी प्रकार अन्य अन्य जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण वर्गणाओं का अन्य अन्य स्पर्धक बनता है, और ये सब स्पर्धक भी मिलकर जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार स्पर्धकों का विचार कर आगे इनके अंतर का विचार करते हैं, यानी स्पर्धकों में जितना अंतर है उसके बाद बताएंगे। ये चार नंबर का भी, योग का चार नंबर का अधिकार बताएंगे। अंतर प्ररूपणा की अपेक्षा, एक एक स्पर्धक के बीच कितना अंतर होता है, तो कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण अंतर होता है, इतना अंतर होता है। क्योंकि हमने देखा था ना, एक एक वर्ग में असंख्यात लोक कितने, तो योग के अविभाग प्रतिच्छेद है, एक 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 से बढ़ते हुए वो पहले में जितना था उससे दुगुना हो जाता है वहां पर, तो बीच में भी असंख्यात लोग कितना अंतर होता है। विशेषण, पहले हम जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण अन्य अन्य वर्गणाएं मिलकर एक एक स्पर्धक बनता है यह बतलाए। वहां हमने यह भी बतलाया है कि एक एक स्पर्धक के भीतर जितनी वर्गणाएं होती है उनमें प्रथम वर्गणा से लेकर अंतिम वर्गणा तक प्रत्येक वर्गणा में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता जाता है। उदाहरणार्थ प्रथम स्पर्धक में चार वर्गणाएं और प्रथम वर्गणा के जीव प्रदेशों में पांच पांच अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, तो दूसरी वर्गणा के जीव प्रदेशों में छह छह, तीसरी वर्गणा के जीव प्रदेशों में सात सात, और चौथी वर्गणा के जीव प्रदेशों में आठ आठ अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाएंगे। ये समझ में आती है बात? पहले वर्गणा के एक एक में पांच पांच, फिर छह छह, फिर सात सात, आठ आठ। हमने चार वर्गणाओं का एक स्पर्धक देखा। अब विचार इस बात का करना है कि क्या जैसे प्रथम स्पर्धक की प्रत्येक वर्गणा में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक पाया जाता है, उसी प्रकार प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों से दूसरे स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में एक अधिक ही अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाएगा, या इनके बीच कोई अंतर है, और यदि अंतर है तो कितना है? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह अंतर प्ररूपणा आई है। इसमें बतलाया गया है कि एक एक स्पर्धक के बीच असंख्यात लोक प्रमाण अंतर है, यानी नीचे के स्पर्धक का जो ऊपर की है और उससे ऊपर की पहली है। इसका आशय यह है कि अनंतर पूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गणा में जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उनसे असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेदों का अंतर देकर आगे के स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। उदाहरणार्थ प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के प्रत्येक प्रदेश में 8-8 अविभाग प्रतिच्छेद है, इसलिए यहाँ असंख्यात लोक का प्रमाण 4 मानकर इतना अंतर देकर द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के प्रत्येक प्रदेश में 13-13 अविभाग प्रतिच्छेद होंगे। इसलिए क्योंकि पहले का पहला है 5 है और दूसरे का पहला 10 हो जाएगा, इसे उन्होंने 13 बताया ना। अंतर की बात है उन्होंने यहाँ, वो दुगुना नहीं लेना उन्होंने, उन्होंने डायरेक्ट बस बराबर है, उसका प्रमाण 4 लिया, परंतु वो हम जहाँ प्रत्येक स्पर्धक के दुगुना दुगुना बताते हैं वो बात यहाँ घटित नहीं हो रही है, बस इतना ही बताया।
तो
बीच का अंतर भी असंख्यात लोक प्रमाण होगा, अंतर असंख्यात लोक, नंबर ऑफ वर्गणाएं श्रेणी के असंख्यात विभाग और नंबर ऑफ स्पर्धक श्रेणी के असंख्यात विभाग। पर अविभाग प्रतिच्छेद कितना हमने स्टार्टिंग में असंख्यात लोग देखा था, अंतर भी असंख्यात लोग का होगा, क्योंकि असंख्यात लोग के बहुत वेरिएशन से वो तुम्हारी संदृष्टि यहाँ फिट नहीं बैठेगी। चार का अंतर यानी 9, 10, 11, 12 अंतर हुआ और फिर 13 आ गए। इस तरह से हम डायरेक्ट 8 में 4 मिलाना ऐसा नहीं करना, अंतर का प्रमाण 4 है, यानी अंतर में 9, 10, 11, 12 का अंतर है, 13वां उसमें पाया जाएगा। असंख्यात लोक का प्रमाण 4 माना ना हमने, यानी 9, 10, 11, 12, तो द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में प्रत्येक प्रदेश में 13-13 विभाग प्रतिच्छेद होंगे। इसी प्रकार आगे सख्त स्पर्धकों में अंतर दे देकर उनकी वर्गणाओं के उस प्रकार से विभाग प्रतिच्छेद होते हैं, आगे इन स्पर्धकों के आधार से स्थान की उत्पत्ति कैसे होती है यह बतलाते हैं। यानी एक एक स्थान में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पर्धक होते हैं, असंख्यात होते हैं। पहले हमने क्या किया, एक एक जीव के प्रदेशों में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद योगों के, ऐसे समान वर्गों के समूह को वर्गणा कहा, एक एक से बढ़ती हुई वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहा, अभी अंतर देकर दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक, ऐसे असंख्यात स्पर्धकों को लेकर एक स्थान होगा, उसकी बात अब बता रहे। देखो ये 5वां है ना, स्थान प्ररूपणा की अपेक्षा। असंख्यात स्पर्धक जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं मिलकर जगन्य योग स्थान होता है, क्योंकि एक जीव को उसके पूरे असंख्यात प्रदेशों में कुछ न कुछ योग है, तो सभी असंख्यात प्रदेशों में मिलकर क्या होते हैं, तो अनेक स्पर्धक होते हैं, तो सब स्पर्धकों का मिलकर यानी जो लोक प्रमाण असंख्यात जो जीव प्रदेश है उसको मिलकर जितने उसमें स्पर्धक पाए जाएंगे उसको हम एक योग स्थान कहेंगे, जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण जो स्पर्धक होते हैं मिलकर जघन्य योग स्थान होता है। ये मिनिमम योग स्थान की बात बताए। इस प्रकार असंख्यात योग स्थान होते हैं, यानी ऐसे वेरिएशंस कितने हो गए, स्थानों के वेरिएशंस असंख्यात हो गए, क्योंकि उनका प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, स्थान भी असंख्यात जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, अलग अलग स्थान है, क्योंकि हमने देखा ना पल्ले के असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना, ऐसे वो तो नंबर ऑफ स्थान बताए थे शुरुआत में ही, वो तो असंख्यात होते हैं, वो ये असंख्यात गुणे करते 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 विशेषार्थ। पहले हम जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धकों का निर्देश कराए, वे सब स्पर्धक मिलकर एक जघन्य योग स्थान होता है, यह सूक्ष्म निगो दब्ध्य पर्याप्त एक जीव संबंधी योग स्थान है, वो मिनिमम पॉसिबल वाला जघन्य सबसे जघन्य बताया। इसी प्रकार अन्य अन्य जीवों के सब प्रदेशों में रहने वाली योग शक्ति के आश्रय से अन्य अन्य योग स्थान की उत्पत्ति होती है। इस हिसाब से सब योग स्थानों की परिगणना करने पर वे जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं। जीव के प्रदेश समान है, कैसे होगा स्पर्धक का प्रमाण? नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान में स्पर्धक बढ़ेंगे कि नहीं समझे? हाँ बिल्कुल, जहाँ स्पर्धक बढ़ेंगे, देखो देखो अभी हमारे पास जीव के प्रदेश तो कांस्टेंट है, उतने ही प्रदेशों में हमको रचना करनी है, कि जहाँ जगन्य योग स्थान है वहाँ इसमें ज्यादा हो गए नंबर ऑफ, कमी होगी स्पर्धक, जहाँ स्पर्धक ज्यादा हो गए, क्योंकि वैसे ऐसे हो गए जहाँ और ज्यादा हो गए, तो इस तरह से रचना होगी। जीव प्रदेश उतने ही रखने हैं ना हमको, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल कम हो गए, जहाँ स्पर्धक बढ़ेंगे तो एक वर्गणा में प्रदेश कम हो जाएगा, उसका अनुभाग बढ़ रहा है ना, हाँ यानी अधिक अनुभाग वाले उसमें और बढ़ते चले जाएंगे, तो कम अनुभाग वाले कम हो जाएंगे नेचुरली। अभी इसको कल पढ़ेंगे, अभी तो हो गया ना, हाँ स्थान परिरूपणा से फिर पढ़ेंगे, क्योंकि योग स्थान क्या है उसको समझना आवश्यक है। पहले हमने भी वो तो कर्मकांड में भी देखा था योग स्थान, और उसकी संदृष्टि भी बनाई थी, और एक योग स्थान से दूसरे में कितना अधिक है उसकी भी बात बताई थी। जरूरत पड़े तो कल पढ़ेंगे हम उसमें से। कर्मकांड पहली पुस्तक में ही योग स्थान की प्ररूपना, पर दूसरी में उसकी संदृष्टि होगी, संदृष्टि में कुछ ज्यादा नहीं है, आप देख के आ सकते हो उसकी संदृष्टि योग स्थान की। पहले में योगस्थान को ही पढ़ेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो।